प्रकरण तीन, रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरित करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए पर उनमें से दो ही चार में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषत चरित, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की वैताल पचीसी, हर नारायण की माधवा नल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीर हट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हमीर हट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र से नख, शिख, षट ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगीं, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गईं। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध्य रहता है पर केवल वाग वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सूक्तिकार कहेंगे। रीतिकाल के भीतर वृंद पृष्ठ संख्या 179, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न हैं, जो नियुक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवा बावनी, छत्रशाल दशक, हिम्मत बहादुर वीरदावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देव काव्य के रूप में हुई हैं अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ी के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। बहुत सी तो लुप्त हो गईं कि उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा, भूषण। पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीति काल के भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वाशिष्य भाषा बहुत ही परमार्जित गद्य में लिखा। एक विशेष देखिए आधुनिक काव्य। इसी रीति काल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। एक बनवारी। ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलावत खान ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खान को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है। बनवारी कवि के श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए, धन्य अमर क्षिति छत्रपति, अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान। पृष्ठ संख्या 180। उत गकार मुखते कढ़ी, इतै कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। आनी कै सलावत खां जोर कै जनाई बात, तोरी धर पंजर करे जे जाय कर की, दलीपति साहि को चलन चलीबे को भयो, गाज्यो गज सिंह को सुनी जो बात बर की, कहे बनवारी बाद साहि के तखत पास, फरकी फरकी लोथ लोथी नसो अर की, कर की बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करो, बाढ़ की बड़ाई कै बड़ाई जम धर की, नेह बर साने तेरे नेह बर साने देखी, यह बर साने बर मुरली बजावेंगे, साजू लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी बे की लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे, तू ही उर बसी नहीं और तिय, कोटी उर बसी तजी तोसो चित लावेंगे, सजे बनवारी बनवारी तन आभरण, गोरे तन वारी बनवारी आज आवेंगे। दो सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि इन्हें कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहे चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। अभिमनु धाई खड़ग पर हारे, सम्मुख जे ही पायो ते ही मारे, भूरी श्रवा बान दस छाटे, कुंवर हाथ के खड़ग ही काटे, तीन बान सारथि उर मारे, आठ बान ते अस्व संहारे, सारथि जूझी गिरे मैदाना, अभिमनु वीर चित्त अनुमाना, यही अंतर सेना सब धाई, मारु मारु के मारन आई, रथ को खेच कुंवर कर लीन है, ताते मार भयानक कीन है, अभिमनु कोपि खंभ पर हारे, एक एक घाव वीर सब मारे, अर्जुन सुत इमि मार किय, महावीर परचंड, रूप भयानक देखियत, जिमि जम लीन है दंड। तीन वृंद, ये मेरता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान हैं। इनकी वृंद सत्तई संवत 1761, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की दो रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सत्सई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 181। भले बुरे सब एक सम, जौलो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही, हितहु को कहिए न तेही, जो नर होए अबोध, जो न कटे को आरसी, होत दिखाए क्रोध। 4. छत्र सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण लीजिए। निरखत ही अभिमन्यु को विदुर डुलायो शीश, रक्षा बालक की करो वह कृपाल जगदीश, आपुन कांधो युद्ध नहीं धनुष दियो भुवडारी, पापी बैठे गेह कत पांडुपुत्र तुम चारी, पौरुष तजी लज्जा तजी तजी सकल कुल कहानी, बालक रन ही पठाय के आपु रहे सुखमानी, कवच कुंडल इंद्र लीने बाण कुंती ले गई, भई बैरिनी मेद नेचित कर्ण के चिंता भई। 5. बैताल। ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रमशाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखी वाले प्रसिद्ध विक्रमशाही ही हैं, जिन्होंने विक्रम सत्सई आदि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संवत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा। पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्मकाल संवत 1734 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधर राय के समान नीति के कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलिया विक्रम को संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे सादे पर जोरदार पद्य कहे हैं। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है। फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलिया नीचे दी जाती है। मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे कर कसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू, ब्राह्मण सो मर जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, अरु बेनियाव राजा मरे तबे नींद भर सोइए, बैताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोइए। 6. आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंस कर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकलता है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थीं। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके, कटी को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन, उस चिट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ जहाँ पना, जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्व सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है, जैसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है, मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं झूमत हैं झुकी झुकी झेपी उघरत हैं, आलम सो नवल निकाई इन नैनन की पाखुरी पदुम पे भवर थिरकत हैं, चाहत हैं उड़ीबे को देखत मयंक मुख जानत हैं रैनी ताते ताही में रहत हैं। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल कांकर बैठी चुन्यो करें, जा रसना सो करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुनो करें, आलम जौन से कुंजन में करी केली तहां अब शीस धुन्यो करें, नैनन में जि सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, कैंदो मोर सोर तजि गए री अनत भाजी कैंदो उत दादुर न बोलत है ए रई, कैंधो पिक चातक महीप काहू मारी डारे कैंधो बागपाती उत अंत गति हुए गई, आलम कहे आली अजहू न आए प्यारे, कैंधो उत रीत विपरीत विधि ने ठई मदन महीप की दुहाई फिरी बेत रही, जूझी गए मेघ कैंधो बीजुरी सती भई, रात के उनिंदे अरसाते मद माते राते अति कजरारे दृग तेरे यो सुहात हैं, तीखी तीखी कोरनी करोरी लेत काढ़ जीव केते भय घायल ओ केते तलफात हैं, ज्यो ज्यो ले सलील चख सेख धोवे बार बार त्योते बल बुंदन के बार झुकी जात हैं। पृष्ठ संख्या 183। कैबर के भाले कैंधो नाहर नहन वाले लोहू के पियासे कहूँ पानी ते अघात हैं, दाने की न पानी की न आवे सुध खाने की या गली महबूब की आराम खुश खाना है, रोज ही से है जो राजी यार की रजाय बीच नाज की नजर तेज तीर का निशाना है, सूरत चिराग रोशनाई आसनाई बीच बार बार बरे बलि जैसे परवाना है, दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हुजे बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। 7 गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्य लोकवास संवत 1765 में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और इसकी और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौर साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं: निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग शोक के मिटैया, किन्ध मानी महामान हो, विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो, कि शुद्धता की मूर्ति हो कि सिद्धता की शान हो, जोबन के जाल हो कि काल हो के काल हो, कि शत्रुन के साल हो कि मित्रन के प्राण हो। 8. श्रीधर या मुरलीधर, ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई। संगीत की पुस्तक, नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद्य, चित्र काव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुक सियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, सात समान आदि का कवित्त सवैया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंग नामा का यह कवित्त नीचे दिया जाता है: इत गल गाजी चढ़ो फरुख सियर साह, उत मौजदीन करी भारी भट भरती, तोप की डकार निसो बीर हर कार हहकार निसो, धोसे की धुकार नी धमकी उठी धरती, श्रीधर नवाब फर जंद खा सुजंग जुरे, जोगिनी अघाई जुग जुगन की बरती, हह रो हरौल भीर गोल पह परी ही तूना, कर तो हरौली तो हरौल भीर परती। 9. लाल कवि, इनका नाम गोरे लाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहो चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है, अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है, उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुण युक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का रुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इन्हें गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहां दिखाना हुआ है, वहां भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है। न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीरव्रत था, वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है, तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाकोदाम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास है, जिसमें बरवे छंद में नायिका भेद कहा गया है, पर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश ही है। छत्र प्रकाश से नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं। छत्रसाल प्रशंसा। लखत पुरुष लक्षण सब जाने, पक्षी बोलत सगुन बखाने, सत कवि कवित सुनत रस पागे, बिलसती मति अरथन में आगे, रुचि सो लखत तुरंग जो नीके, बिहसी लेत मोजरा सब ही के, चौंकी चौंकी सब दिसी उठे, सुबा खान खुमान, अब धौ धावे कौन पर, छत्रसाल बलवान। युद्ध वर्णन। छत्रसाल हाड़ा तह आयो, अरुण रंग आनन छबिछायो, भयो हरौल बजाए नगारो, सार धार को पहिरन हारो, दौरी देश मुगलन के मारो, दपटी दिली के दल संघारो, एक आन शिवराज निभाही, करे आपने चित की चाही, आठ पात साही झक झोरे, सुबनी पकड़ी दंड लय छोरे। पृष्ठ संख्या 185। काटी कटक किरवान बल, बाटी जम्बुकनी देहु, ठाटी युद्ध यही रीति सो, बाटी धरनी धरी लेहु, चहु ओर सो सुबनी घेरो, दिसनी अलात चक्र सो फेरो, पजरे सहर साही के बांके, धूम धूम में दिनकर ढाके, कबहु प्रगट युद्ध में हाके, मुगलनी मारी पुहुमि तल ढाके, बाणन बरखि गयनंदन फोरे, तुरकनी तमक तेग तर तोरे, कबहु उमड़ी अचानक आवे, घन सम घुमड़ी लोह बरसावे, कबहु हाकी हरौलन कूटे, कबहु चापी चंदालनी लूटे, कबहु देश दौरी कहलावे, रसद कहूँ की कढ़न न पावे। 10. घनानन। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादरशाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। उन्होंने इसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कविता से झलकता है। गुरनी बतायो राधा मोहन हु गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, अद्भुत अभूत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों न ताही लही रे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदे सो पपीहापन बही रे, जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलिन पे पतित परे रही रे। संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलट कर रज 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 कहकर तीन मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा था। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दे सनमान को, झूठी बतियानी को पत्यानी ते उदास भय के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली पृष्ठ संख्या 186 और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्व सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्वों तक के मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत, इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलम्ब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिज्यो हियो बिछुरे मिले प्रीतम साती न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घनजू के कवित्त बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्तिभाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपने पूर्व प्रेसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीज सुजान सची पटरानी बची बुद्धि बापुरी वह करी दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा किया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है, रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन हो तो कहा हेरे रंग मान लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों का निरूपण का नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोधमूलक वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद भी प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और यह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तभी उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी नई ओर से शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की छटा इनमें दिखाई पड़ी। खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं। क अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सो आनी निहोरत है। ख वह सो घरी भाग उघरी अनंद घन सुरस बरसी लाल देखी रो हरी हमें खुले भाग्य वाली घड़ी में विशेषण विपर्य। ग उघरो जग छाए रहे घन आनंद चातक जो तकिए अब तो। उघरो जग संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया। घ कहिए सु कहा अब मौन भली नहीं खोवते जो हमें पावते जू हमें हमारा हृदय। विरोध मूलक वैचित्र भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है। जैसे च झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो ताके गुण घन घन आनंद कहा गनो। छ उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। ज गति सुनी हारी देखी थकनी मैं चली जाती थिर चर दशा कैसी ढकी उघरती है। झ तेरे ज्यो न लेखो मोहि मारत परेखो महा जान घन आनंद पै खोयबो लहत हैं। इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप से भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रजभाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। कान परे बहुतायत में इकलैन की वेदन जानो कहा तुम ह मनमोहन मोहे कहू न बिथा बिमनैन की मानो कहा तुम बौरे वियोगिन आप सुजान वै हाय कछु उर आनो कहा तुम आरतिवंत पपीहन को घन आनंद जु पहचानो कहा तुम कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती कुकी कुकी अब ही करे जो कि न कोरी रह पेड़ परे पापी ये कलापि निसिध्योस ज्यों ही चातक रे घातक वह तुहु कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घरो दल जोरी ले जौलो करे आवन बिनोद बरसावन वे तौलो रे डरारे बजमारे घन घोरी ले। इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण लीजिए। एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन वारी तोसो और कौन मने ढरको ही बानी दे जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे जान उजियारे गुण भारे अति मोही प्यारे अब वह अमोही बैठे पीठी पहचानी दे बिरह बिथा की मूरी आखिन में राखो पूरी धूरी तिन्ह पायन की हाह नैकुवानी दे। ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए। पूरन प्रेम को मंत्र महा पन जा मधिसोधी सुधारी है लेख्यो ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो पचिके रचि राखी बिसेख्यो ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाच न देख्यो आना कानी आरसी निहारी बो करे गो कौलो कहा मो चकित दशा त्यों न दीठ डोली है मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू कूक भरी मुखता बुलाए आप बोली है जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पैज परी जानी ये गो टेक टरे कौन धो मलोली है रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी कब हूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली है। अंतर में बासी वे प्रवासी कैसो अंतर है मेरी न सुनत दया आपनियो ना कहो लोचन नि तारे वे सुझायो सब सूझी नाही बूझी न परती ऐसी सोच नी कहा दहो हो तो जान राय जाने जाहू न अजान याते आनंद के घन छाया छाया उघरे रहो मूर्ति मया की हाहा सूरती दिखे नेकू हमें खोय या विधि हो कौन धो लहा लहो मूर्ति सिंगार की उजारी छवि आछी भाती दीठी लालसा के लोए नानी लले आजी हों रति रसना स्वाद पावड़े पुनीत कारी पाए चूमी चूमी क्या कपोलनी सो मांझी हो जान प्यारे प्राण अंग अंग रुचि रंगीन में बोरी सब अंगन अनंग दुख भाजी हो कब घन आनंद धरोही बानी देखे सुधा हेत मन घट दरकनी सुठी राजी हो रांजना फूटे बर्तन में जोड़ या टाका लगाना निशी द्योस खरी उर मांझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहनी की तकी मोर नित्यो चख ढोरी रहे धरी गो ही ढोरनी बाहनी की चट दय कटी पै बट प्राण गए गति हो मति में अवगाहनी की घन आनंद जाने लग्यो जबते जक वागी मोही कराहनी की। इस अंतिम सवैये के प्रथम तीन चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी चाहनी और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नारी में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। पर कारज देह को धारे फिरो पर जन्य यथारथ वह दरसो निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सुंदरता सरसो घन आनंद जीवन दायक हो कब मेरियो पी रहिए परसो कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मोह असुवान को ले बरसो अति सूदो स्नेह कुमार गह जहाँ न कुसयानप बाँक नहीं तहाँ साच चले तजी आप नपो झिझके कपटी जो निशाक नहीं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो आँक नहीं तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला मन लेहु पैदेहु छटाक नहीं। विरह लीला से सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो लगे ये प्राण तुमसो है जहाँ हो रहो कि न प्राण प्यारे नैन आगे तिहारे कारणे दिन रात जागे सज्जन हित मान के ऐसी न कीजे भई है बावरी सुध आए लीजे। 11 रस निधि। इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुँचता है। पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं न जाए दरस भूख लागे दृगन भूख ही देत भगाए लेहु न मजनू घोर ढिग को लैला नाम दर्दवंत को नेकुतो लेन देहु विश्राम। पृष्ठ संख्या 190। चतुर चितेरे तु सभी लिखत न ही ठहराए कलस छुवत कर आंगुरी कटी कटाछन जाए मन गयंद छवि मद छके तोरी जंजीर भगात हिय के झीने तार सो सहजे ही बंधी जात। 12 महाराज विश्वनाथ सिंह। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्ध हस्त थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं पर इनकी रचनाएँ भी कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। पहला अष्टयाम आह्निक, दूसरा आनंद रघुनंदन नाटक, तीसरा उत्तम काव्य प्रकाश, चौथा गीता रघुनंदन शतिका, पांचवा रामायण, छठा गीता रघुनंदन प्रामाणिक, सातवां सर्व संग्रह, आठवां कबीर बीजक की टीका, नौवां विनय पत्रिका की टीका, दसवां रामचंद्र की सवारी, ग्यारहवां भजन, बारहवां पदार्थ, तेरहवां धनुर्विद्या, चौदह आनंद रामायण, पंद्रह परम धर्म निर्णय, सोलह शांति शतक, सत्रह वेदांत पंचक शतिका, 18, गीतावली पूर्वार्ध 19, ध्रुवाष्टक 20, उत्तम नीति चंद्रिका 21, अबोध नीति 22, पाखंड खंडिका 23, आदि मंगल 24, बसंत चौतीसी 25, 84 रमैनी 26, ककहरा 27, शब्द 28, विश्व भोजन प्रसाद 29, ध्यान मंजरी 30, विश्वनाथ प्रकाश 31, परम तत्व 32, संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द, रमैनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इसकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रजभाषा में नाटक पहले पहल इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाइन भृत्यन विष्णु सो रैयत भानु सो शत्रु न काल स्वभाव शत्रु बलि सो बचे करी बुद्धि और अस्त्र सो धर्म की रीति चलावे जीतन को करे केते उपाय और दीर्घ दृष्टि सबै फल पावे भाकत है विश्वनाथ ध्रुवे नृप सो कबहु नहीं राज गवावे बारी गज सोर रथ सुतुर कतार जेते प्यादे इंडवारे जे सभी है सरदार के कुंवर छबीले जे रसीले राजवंश वारे सूर अनियारे अति प्यारे सरकार केते जातिवारे केते देशवारे जीव स्वान सिंह आदि सैलवारे जे शिकार के डंका की धुकार वे सवार सब एक बार राजवार पार कार कौशल कुमार के उठो कुंवर दो प्राण पियारे हिम ऋतु प्रात पाये सब मिटगे नभसर पसरे पुहकर तारे जगवन महन कस्यो हर्षित हिय विचरण हेत दिवस मनियारो विश्वनाथ यह कौतुक निरखो रवि मनि दसो दिशन उजियारो करिजो कर्मे कैलास लियो कसिके अब नाक सिकोरत है दैतालन बीस भुजा कहराए झुको धनुको झकझोरत है तिल एक हले न हले पुहुमी ऋषि पीस के दातन तोरत है मन में यह ठीक भयो हमरे मद काको महेश न मोरत है। 13, भक्तवर नागरी दास जी। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए हैं, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह हैं, जिनका जन्म पौष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अमर शाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कला से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्रवृत्ति का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है। जहाँ कलह तह सुख नहीं कलह सुखन को सूल सबै कलह इक राज में राज कलह को मूल कहा भयो निरपहु भय ढोवत जग बेगार लेत न सुख हरिभक्त को सकल सुखन को सार मैं अपने मन मूढ़ते डरत रहत हों हाय वृंदावन की ओरते मति कबहों फिर जाए। वृंदावन पहुंचने पर वहां के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरी दास नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम को सुना, तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को ठाड़े दूरी उदास दौरी मिले भरी नैन सुनी नाम नागरी दास इक मिलत भुजन भरी दौर दौर इक टेरी बुलावत और ठौर। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुंचे। रात को जब यमुना के किनारे लौट कर आए तब वहाँ कोई बेड़ा न था। वृंदावन के वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है, देखियो श्री वृंदा विपिन पार बीच बहुत ही महागंभीर धार, नहीं नाव नहीं कुछ और दाव, हे दई कहा कीजे उपाव, रहे वार लगन की लगे लाज, गए पार ही पूरे सकल काज, यह चित्त माही करके विचार, परे कूद कूद जलमध्य धार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी वणी ठणी जी भी रहती थी जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में आश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रज लीला संबंधिनी बहुत सी पुस्तकें पृष्ठ संख्या 192 लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनके नाम ये हैं, सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश संवत 1800, पद प्रसंग माला, ब्रज वैकुंठ तुला, ब्रज सार संवत 1799, भोर लीला, प्रात रस मंजरी, विहार चंद्रिका संवत 1788, भोजनानंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, पाव पचीसी, गोपी बैन बिलास, आनंद लग्नाष्टक, रास रसलता, अरिल्लाष्टक, मजलिस मंडन, सदा की मांज, सांझी के कवित्त, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, चांदनी के कवित्त, दिवाली के कवित्त, गोवर्धन धारण के कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्ति मग दीपिका संवत 1802, तीर्थानंद 1810, फाग विहार 1808, बाल विनोद वन विनोद 1809, सुजानानंद 1810, भक्ति सार 1799, देह दशा वैराग्यवल्ली, रसिक रत्नावली 1782, कलि वैराग्यवल्लरी 1795, अरिल्ल 25 छूटक विधि पारायण विधि प्रकाश 1799, रेखता मनोरथ मंजिनी शिख नख नक्षिक छूटक कवित चचरिया 1780, रामचरितमाला, पद प्रबोध माला, जुगल भक्ति विनोद 1808, निकुंज विलास 1794, गोविंद परचई वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, पद मुक्तावली। इनके अतिरिक्त बैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों को 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरी दास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेषण सी प्रतीत होंगी, पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल्ल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है, विशेषतः पदों की। कवित्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देखिए। वैराग्य सागर से, काहे को रे नाना मत सुने तू पुरातन के, तही कहा तेरी मूढ़ गूढ़ मति पंग की, वेद के विवादनी को पावे गो न पार कहूँ, छाड़ी देहु आस अब सब दान नान गंग की, और सिद्धि सोधे अब नागर न सिद्ध कछु, मानी लेहु मेरी कही वार्ता सुढंग की, जाई ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रेणु रचि और श्याम रंग की। अरिल, अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिनके गृह नहीं रहे संत सम्मान सो, उनकी संगति भूली न कबहु जाइए, ब्रजनागर नंदलाल सु निसिदिन गाइए। पद, जो मेरे तन होते दोय, मैं काहू न कछु नहीं कहतो, मोते कछु कहतो नहीं कोय, एक जो तन हरि विमुखन के संग रहतो, देश विदेश विविध भांति के जग दुख सुख जहां नहीं भक्ति लवलेश, एक जो तन सत्संग रंग रंगी रहतो अति सुखपुर, जन्म सफल करी ले तो ब्रज बसी जहां ब्रज जीवन मूर, द्वै तन बिन द्वै काज न हुए है, आयु तो छिन छिन छीजे, नागरी दास एक तनते अब कहां काह करी लीजे। मनोरथ मंजरी से, चरण छिदत काटेनी ते स्रवत रुधिर सुधि नाही, पूछती हो फिर हो भटू खग मृग तरु बन माही, कबे झुकत मुँह ओर को एहे मदगज चाल, गर बाही दीने दो प्रिया नवल नंदलाल। इश्क चमन से, सब मजहब सब इल्म अरु, सब ऐश के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद। आया इश्क लपेट में लागी चश्म चपेट, सोई आया खलक में और भरे सब पेट। वर्षा की कविता से, भादो की कारी अंध्यारी निशा झुकी, बादर मंद फूही बरसावे, श्यामा जू आपनी ऊंची अटापे, छकी रस रीति मलार ही गावे, ता समय मोहन के दीर्घ दूरी ते आतुर रूप की भीख यो पावे, पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। 14 जोधराज, ये गौड़ ब्राह्मण बाल कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ वर्तमान नीम राणा अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंबोर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की 56 पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है, जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप ह का प्रयोग। हम्मीर रासो की कविता बड़ी ओजस्वनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है, जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीर हट लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में है और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 194। कब हट करे अलावदी रणथंवर गढ़ आही, कबे शेख सर न रहे बहोर्यो महिमा साही, सूर सोच मन में करो पदवी लहो न फेरी, जो हट छंडो रावतुम उतन लजे अजमेरी, राखी शेख न तजो तजो शीस गढ़ देश, रानी राव हमीर को यह दिन हो उपदेश, कहाँ पवार जगदेव शीस आपन कर कटयो, कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर दुख मिटयो, सदा भार नित करण कनक विप्रन को दीनो, रहो न रहिए कोय देव नर नाग सुचीनो, यह बात राय हम्मीर सु रानी इम आशा कही, जो भई चकव्वे मंडली सुनो रवि दीखे नहीं, जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताही, जो जन्मे संसार में अमर रहे नहीं आही, कहाँ जैत कहाँ सूर कहाँ सोमेश्वर राणा, कहाँ गए पृथ्वीराज सहा दल जीती न आणा, हो तब मिटे न जगत में कीजे चिंता को ही, आशा कहे हमीर सो अब चूको मति सोही, पुंडरीक सुत सुता तासु पद कमल मनाऊ, बिशद बरन बर बसन बिशद भूषण हिय ध्याऊ, बिशद जंत्र सुर शुद्ध तंत्र सुंदर जुत सो है, बिशद ताल एक भुजा द्वितीय पुस्तक मन मोह, गति राज हंस हंस चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल, जय मा तु सदा बरदायिनी देहु सदा बरदान बल। 15 बख्शी हंसराज, ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरि किशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज श्री पन्ना नरेश श्री अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज के व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की हैं। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं, स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, 12 मासा, संवत 1811। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं, शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है, कृत्रिमता कलेश नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में है और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है, उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दमकति दीपति देह दामिनी सी, चमकत चंचल नैना, घूंघट बिच खेलत खंजन से, उड़ी उड़ी दीठे लगैना, लटकती ललित पीठ पर चोटी, बिच बिच सुमन सवारी, देखे ताही मैर सो आवत मनह भुजंगिनी कारी, इतते चली राधिका गोरी सौपन अपनी गैया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया, असी भी हैं हसी कुंवरी राधिका कान कुंवर सो बोली, अंग अंग उमगी भरे आनंदो दरकति छिन छिन चोली, एरे मुकुटवार चरवाहे गाय हमारी लीजो, जाए न कहूँ तुरत की ब्यानी सांप खरक कह दीजो, होहू चरावन हार गाय के बांधन हार छुरैया, कली दीजो तुम आए दोहनी पावे दूध लुरैया, कोऊ कहूँ आ राय बन वीथिन या लीला लखी जह, कोऊ कही कही कुटिल कठिन कुटिलन सो सिगरे ब्रज वगरह हैं, जो तुम्हारी इनकी ये बातें सुनी है कीरति रानी, सो तो कैसे परहे पाटे ते घटी है कुल को पानी। 16. जनक राज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं: आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत 34, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम सतरंगिणी, आत्मसंबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद नीचे दिया जाता है: फूले कुसुम ध्रुम विविध रंग, सुगंध के चहुचाब, गुंजत मधुप मधुमत नाना रंग रज अंग फाब, सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कंत बहंत, परसत अनंग उदोत हिय अभिलाष कामिनी कंत। 17. अलबेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त इनका और कोई वृत्त ज्ञात नहीं। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सतकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्त्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं: लाल तेरे लोभी लौलुप नैन, के ही रस छकनी छके हो छबीले मानत नाहिन चैन, नींद नैन घुरी घुरी आवत अति घोरी रही कछ नैन, अलबेली अली रस के रसिया कत बितरत ये बैन, बने नवल प्रिय प्यारी सरद रैन उजियारी, सरद रैन सुखदैन मैन मैं जमुना तीर सुहायो, सकल कला पूरन ससी शीतल महिमंडल पर आयो, अतिशय सरस सुगंध मंद गति बहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव जोबन बने नवल प्रिय प्यारी। 18. चाचा हित वृंदावन दास। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौर ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभीय गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के लघु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रम में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1,25,000 पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1,00,000 पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नक्षिक, अष्टयाम, समय प्रबंध, छद्मलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छद्मलीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राम रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं। मनिहारी लीला से। मिठ बोलनी नवल मनिहारी, भौहें गोल गरूर हैं, याके नैन चुटीले भारी, चूरो लखी मुख ते कहें, घूंघट में मुस्काती, ससि मनु बदरी ओटते दूरी दर्शत यही भाती। चूरो बड़ो है मोल को नगर न गाहक कोय, मो फेरी खाली परी आई सब घर टोए। प्रीतम तुम मो दृगन बरसत हो, कहा भरोसे वह पूछत हो, कै चतुराई करी जो हंसत हो। लीजे परखी स्वरूप आपनो पुतरीन में तुम ही तो लसत हो, वृंदावन हित रूप रसिक तुम कुंज लड़ावत ही हुलसत हो। 19 गिरधर कविराय। इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं, नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अपर लोग भी दो चार चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा और प्रेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो उन्होंने शिष्यता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। दो कुंडलियां दी जाती हैं। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हर ना कुश अरुकंस को गयो दुहन को राज। गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गिर भय मई मंडल सिगरे। कह गिरधर कविराय जुगन याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा कहु कौन पाई। रहिए लटपट काट दिन बरु घाम ही में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन बहे बयारी टूटी जब टूटी तब जर से जय है। कह गिरधर कविराय छा मोटे की गहिए, पात सब झरी जाए तो छाया में रहिए। 20 भगवत रसिक। ये ठट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचना काल संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुंडलियां, छप्पय आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था, इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझे सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पदे नीचे दिए जाते हैं। कुंजन ते उठी प्रातः गात जमुना में धोवे, निधुबन करी दंडवत बिहारी को मुख जोवे। करे भावना बैठी स्वच्छ थल सहित उत्पादा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन साधा। संग करे भगवत रसिक कर गरवा उदरी गरे, वृंदावन बिहरत प्रे जुगल रूप नैनन भरे। हमारो वृंदावन उर और माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर। छूट जाती सत असत वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। 21 श्री हठी जी। ये श्री हित हरिवंश राय जी की शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्व सवैया हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा और प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उससे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कल्प लता के किंधो पल्लव नवीन दो, हरण मंजिता के कंजिता के वनिता के हैं। पावन पतित गुण गावे मुनिता के छवि, छले सबिता के जनता के गुरुता के हैं। नवीन निधिता के सिद्धता के आदि आले हठी, तीनों लोकता के प्रभुता के प्रभुता के हैं। कटे पापता के बड़े पुण्य के पता के जिन, ऐसे पदता के विश्वभानु की सुता के हैं। पृष्ठ संख्या 198। गिरी कीजे गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के नगर को। नर कौन तौन जौन राधे राधे नाम रटे, तट कीजे वरकुल कालिंदी कगर को। इतने पै जोई कछु कीजिए कुंवर कान, रखिए न आन फिर हटी के जगर को। गोपी पदक पंकज पराग कीजे महाराज, त्रिन कीजे राव रे गोकुल नगर को। 22 गुमान मिश्र। ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके तीन भाई और थे, दीपशाही, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषत काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदावटी पिंगल। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से संवत 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका, वेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषत के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्र वज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित आदि कठिन वर्ण वृत्तों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं है उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं, दुर्जन की हानि बिरधा पनोई करे पीर, गुण लोप होते एक मोती न के हार ही, टूटे मणि माले निरगुण गाये ताल लिखे, पोथी नहीं अंक मन कलह विचार ही, शंकर बरन पशु पक्षिन में पाइयत, अलक ही पारे असभंस अंश भंग निर्धार ही, चिर चिर राज राज अली अकबर सुर राज, के समाज जाके राज पर बार ही, दिग्गज दबद दबकत दिगपाल भूरी, धूरी की धुंधेरी सु अंधेरी आभा भान की, धाम और धरा को माल बाल अबला को अरी, तजत परान राह चाहत परान की, सैयद समर्थ भूप अली अकबर दल, चलत बजाय मारो दुंदु भी दुकान की, फिर फनानी फनी से उलटत ऐसे, चोली खोली ढोली जो तमोली पाके पान की, नाती जहाँ सुनैना नित बावली में, छूटे उरोज तल कुंकुम नी रही में, श्रीखंड चित्र दीर्घ अंजन संघ बाजे, मानो त्रिबेनी नित ही घर ही बिराजे, हाटक हंस चले उड़के नभ में, दुगुनी तन ज्योति भई, लीक सी खेच गयो छन में, छहराय रही छवि सोन मई, नैनन सो निरख्यो न बनाए के उपमा मन माहि लई, श्यामल चीर मनो पसरो तेहि पे कल कंचन बेली नई। 23 सरजू राम पंडित। इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण दोहो चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्याय में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लव कुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है, उसमें गंभीर है। नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु, कहा कलप तरु का सुरधेनु, गुरुपद रज रज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा, तब लगी जग जड़ जीव भुलाना, परम तत्व गुरु जी नहीं जाना, श्री गुरु पंकज पाँव पसाओ, श्रवत सुधामय तीर्थ राओ, सुमिरत होत हृदय असनाना, मिटत मोहमय मन मलनाना। 24 भगवंत राय खींची। ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है। वह रामायण तो इनकी कहीं मिलती नहीं, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली है, इसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कविता देखिए, विदित विशाल ढाल भालू कपि जाल की है, ओट सुरपाल की है तेज के तुम्हार की, जाहिं सो चपेटी के गिराए गिरी गढ़ जासो, कठिन कपाट तुरे लंकनी सो मार रखी, भने भगवंत जासो जागी लागी भेटे प्रभु, जाके त्रास लखन को छुबिता खुमा रखी, ओढ़े ब्रह्म अस्त्र की अवाति महाताति वंदो, युद्ध मत माति छाती पवन कुमार की।